چڑھاؤ کی شدید جھٹکے کا سامنا ہے جس سے سرمایہ کاروں کو بہت پریشان کر رکھا ہے. تجزیہ کاروں نے اس ٹینشن کو مسائل سے جوڑا ہے جن کا نریندر مودی کو اپنی تیسری مدت میں سامنا تھا. انڈیا جو ہے وہ انڈیکس کے مطابق بھارتی اسٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی پیمائش کرتا ہے. اپریل میں معمولی 0.30% اضافے اور مارچ میں 18% کی نمایاں کمی کے بعد مئی میں اب اس میں 4 شیئرز میں تقریباً 33% ان کا جو شیئر ہے وہ بڑھ چکے ہیں. یہ اتار چڑھاؤ ظاہر کرتے ہیں کہ انڈیا کے الیکشن جو ہیں وہ نریندر مودی صاحب کو ریکوائرڈ ریزلٹس شاید نہ مل سکیں. ریکوائرڈ ریزلٹس ان کے کتنے 400 سیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں. 52% کے قریب فیصلہ ہو چکا ہے, باقی رہ گیا 48%. لیٹس سی ہاؤ تھنگز موو فارورڈ. ایک گیت سنتے رہیں. ہم آپ کو 6:00 تقریباً 20-25 منٹ تک ہم آپ کے ساتھ, نہیں ہم آپ کے ساتھ 8:30 تک ہی ہیں. 6:20-25 منٹ پہ میں آپ کو پاکستان لے کے جاؤں گی اور پاکستان سے 9 مئی کے حوالے سے ہمارے ساتھ ہوں گے لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. اور اس کے بعد پھر ہمارا انٹرٹینمنٹ کا پروگرام, اس انٹرویو کے فوراً بعد ہمارا انٹرٹینمنٹ کا پروگرام ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. انٹرٹینمنٹ کے پروگرام کو پیش کر رہے ہوں گے جناب لیاقت ملک صاحب, اس پروگرام کو پیش کریں گے اور بڑی محنت سے پیش کرتے ہیں لیاقت بھائی آپ کی پسند کے خوبصورت گیت شعر اور نغمہ. یہ پروگرام 8:30 تک چلے گا, سوا آٹھ بجے تک چلے گا. اس کے بعد پھر ہماری دعا کا سیگمنٹ ہوگا اور بس پھر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. واٹ ایلس, ساتھ رہیے گا. میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز اسپانسرز کو ضرور دعوت دیجیے گا. علیمان گروسرز پہ بھی آپ کو لے کے جانا چاہتی ہوں. علیمان گروسرز یہ مسساگا میں ڈنڈاس اینڈ ہیورن ٹیڈیو کے انٹرسیکشن پہ علیمان گروسرز, آپ نے وہاں جانا ضرور ہے. بہت سپرب سیل لگی ہوئی ہے اینڈ پریکٹیکلی یو ول سیو الاٹ, گارنٹی کے ساتھ یو ول سیو الاٹ. علیمان گروسرز 2560 شیپرڈ ایونیو مسساگا میں, یہ ڈنڈاس اینڈ ہیورن ٹیڈیو مسساگا جس کو کوکس ویل بھی کہتے ہیں وہ انٹرسیکشن ہے, مگر پہلی سڑک جو ایسٹ پہ ہے وہ شیپرڈ ہے. شیپرڈ پہ آپ ساؤتھ کی طرف مڑیں گے, بہت عرب لوگ یہاں پہ رہتے ہیں. 2560 شیپرڈ ایونیو پہ ملے گا آپ کو علیمان, جائیے تو پلیز پروگرام کا ریفرنس ضرور دیجیے گا. ہمارے آج کے پروگرام کو تعاون دیا ہے آئی ٹی این کی پروڈکٹس نے بھی, اور آئی ٹی این کی پروڈکٹس تمام گروسری اسٹورز کے ساتھ ساتھ مین اسٹریم کے اسٹورز پہ اویلیبل ہیں. بائی دا وے علیمان کے اوپر جو مینار کلاسک رائس ہے وہ 11.99 کے لگے ہیں, وچ از نیکسٹ ٹو امپاسبل اینی ویئر, آپ نے وہاں جانا ہے. اچھا, اور اس فرائیڈے, اس سیٹرڈے کو, سیٹرڈے کو ایک گرینڈ اوپننگ ہونے جا رہی ہے. وی ول آل بی دیئر, ساز و آواز کی طرف سے آپ کے لیے تحفے تحائف بھی ہوں گے. تو آپ نے آنا کہاں ہے, 11 مئی کو صبح 11 بجے آنا ہے آپ نے. کہاں, نارتھ پارک اور ایئرپورٹ پہ. کہاں پہ آنا ہے, پائل جیولرز پہ. اسلم بھائی آپ کے منتظر, ہم آپ کے منتظر, ہم بھی ہوں گے. سوڑی ناگرا کا پروگرام اس کو لائیو براڈ کاسٹ کر رہے ہیں, ہماری ٹیم بھی وہاں پہ موجود ہوگی جو کہ آپ کے لیے ویڈیو اس کی شیئر کرے گی. ہم آئی گارنٹی یو ول انجوائے, فار شیور یو ول انجوائے. تو انہی اسپانسرز کے توسط سے ایک گیت.
सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। है वफा इस जहां को, एक दिन दिखला दूंगा मैं दीवाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। ले लिया दिल हाय मेरा दिल, हाय दिल लेकर मुझको ना बहलाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम।
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
इन सब कामों के लिए तो मुझे बैक होम ही जाना पड़ेगा।
कौन से काम?
वही बेटे की शादी सर पर है और ज्वेलरी का खास काम अभी तक नहीं हुआ।
बस इतनी छोटी सी बात, आप पायल ज्वेलर्स पे जाओ ना।
मगर मुझे चाहिए 22 कैरेट की कस्टम ब्राइडल ज्वेलरी, हीरे की अंगूठी, चूड़ियाँ, बालियाँ, कड़े, वो भी लेटेस्ट डिजाइन के और इम्पोर्टेड मटेरियल में।
हाँ हाँ, पायल ज्वेलर्स पे सब किस्म की ज्वेलरी है और वो स्पेशलाइज करते हैं इन सब में ही, दुबई, सिंगापुर, इंडिया, पाकिस्तान और यहाँ की तमाम लेटेस्ट ज्वेलरी।
मुझे उनका एड्रेस बताओ, मैं आज ही ये काम जाके करवाती हूँ।
पायल ज्वेलर्स की ग्रैंड ओपनिंग होने जा रही है 11th मई को एट 11 AM, 2720 नॉर्थ पार्क ड्राइव, यूनिट 42, ब्रैम्पटन, या कॉल करें 905-790-7879।
चांदनी
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 चांदनी बैंक्वेट हॉल,
इंटेलिजेंट चॉइस लोकेशंस, साउंड सिस्टम इनोवेशंस, चांदनी बैंक्वेट हॉल।
30 years of hospitality experience, corporate event, exhibition, expo or any celebration.
Sare package ka naam, Chandni Banquet Hall. Aaj hi call kijiye, 437-218-8734, chandnihalls.ca. Chandni.
Truck ka ghoomta bhaiya Canada ki moishat ki tarakki ka zamin. आपका ट्रक सड़कों पर राज करे और कनाडा की मईशत तरक्की की राह पर गामजन रहे। ट्रक मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक, ट्रक की बेहतरीन सर्विस के लिए क्विक ट्रक लियो थ्रू आउट ऑन्टेरियो, नो अपॉइंटमेंट नीडेड, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, वन स्टॉप शॉप। अब तीसरी लोकेशन एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी, क्विक ट्रक लियो 519-622-0660, quicktruckcube.com। 770 AM دی نشریات سنن تے حالات حاضرہ تو با خبر رہن دے واسطے نیوز انفارمیشن انالیسس الیکٹرک گڈیاں دے وچ ای آواز آفیشل ایپ یا ساڈی ویب سائٹ eawaz.com، لوکل نمبر
6478724900।
اپنی کمیونٹی دا سب تو بڑا ودیا کوالٹی والا تے سب تو پرانا سوڈی فرنیچر ہر گھر دی پہچان بن چکی ہے۔
او پھر بنے بھی کیوں نہ، کیونکہ بیڈ روم سیٹ، سوفا سیٹ، میٹریسز، ڈائننگ ٹیبل، ڈیکوریٹو آئٹمز، گل کی جی سارے گھر دا فرنیچر ودیا کوالٹی تے ڈسکاؤنٹڈ پرائس تے مل جاندا۔ سوڈی فرنیچر تو 3 سال لئی نو بیاج،
142 کینیڈی روڈ، برامٹن، 905-874-7171۔
शॉपर्स हो जाइए तैयार, लीजा कॉस्मेटिक्स फिर से लेके आ रहे हैं बड़े ब्रांड्स की बड़ी सेविंग्स और बिग सेल खास आपके लिए।
जी हाँ, वर्ल्ड फेमस ब्रांड के परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स एंड स्किन केयर, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स,
80% तक की सेविंग्स ऑन योर फेवरेट ब्रांड्स।
बस आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्कम।
ध्यान रहे, सेल तो सिर्फ अप्रैल 20th से मई 12th तक ही है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे। विजिट leezascosmetics.com।
क्या आपके घर और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल हो रही है? क्या आप दुरुस्त इंश्योरेंस कवरेज के लिए अच्छी कीमत की तलाश में हैं? तो फिर आपको ऑल स्टे एजेंसी के राजा मुदस्सिर को 6472903773 पर कॉल करनी चाहिए। आज ही कॉल करें और आप दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस कराते वक्त तकरीबन $1,775 की बचत कर सकते हैं। राजा मुदस्सिर 6472903773 ऑल स्टेट के साथ आप महफूज हाथों में हैं। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
जी साहब, यहाँ से आपको एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ की तरफ लेके जाना चाहती हूँ, प्लीज स्टे ट्यून्ड। आपको पता ही है कि आज से 17 अप्रैल 2023 को सोने की चोरी हुई थी और बहुत बड़ी चोरी हुई थी पियर्सन एयरपोर्ट पे। बेशुमार लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था, मगर चंद लोग जो थे एट लार्ज थे, जिसमें एक बंदा तो यूएस यूनाइटेड स्टेट्स में जेल भुगत भी रहा है, वो फायर आर्म्स लेके आ रहा था कनाडा की तरफ। अभी एक और आदमी बेचारा, लो आप अपने दाम में से याद आ गए, ये भाईजन बेचारे ग्रोवर साहब जो हैं, ये मेरा ख्याल इंडिया गए हुए थे, इंडिया से वापस आए, पता नहीं था इनको फड़े गए लोग की, लो जी ये बेचारे लैंड हुए तो साथ ही फड़े गए। ये साहब अनदर सस्पेक्ट जो है, इनको पकड़ लिया गया है। गोल्ड की जो चोरी हुई थी 17 अप्रैल को हुई थी, न्यूज रिलीज के मुताबिक थर्सडे को पुलिस ने कहा बेचारा इंडिया से 36 साल का आदमी है, ब्रैम्पटन से इसका तलक है, और मई 6 को इसको अरेस्ट किया। आज पुलिस ने अल्टीमेटली आज ये खबर दे दी है। अब ये उसको भी जाहिर है ये भी उस चोरी में शामिल था, ग्रुप ऑफ पीपल था ना। और ग्रोवर जो है इसको यूनाइटेड स्टेट्स में भी इंडाइटमेंट इसको में की हुई है, और पील रीजन पुलिस के मुताबिक 21 चार्जेस लगे हैं। 36 साल इसकी उम्र है ये लड़का, अच्छा भला कितना प्यारा बच्चा है, बट वही बात है ना कि बैड कंपनी टेक्स अस एनीवेयर। पुलिस ने कहा है कि चार्जेस एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए 1 ईयर आफ्टर द जब चोरी हुई थी, मगर पुलिस ने पकड़ लिया। 17 अप्रैल 2023 को ये चोरी हुई थी, ज्यूरिच से ये स्विट्जरलैंड से ये गोल्ड का बहुत बड़ी शिपमेंट आई थी, इसमें तकरीबन 6600 गोल्ड की बार्स थी, 99% प्योर, यानी वो जो सोने की बार्स नहीं आप लेते वही वाली है। 400 किलोग्राम सोना था, 220 मिलियन इसकी कीमत लगाई गई थी, और इसके अलावा 2.5 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स भी इसमें मौजूद थे। ये सामान जब आपको याद ही होगा आया था, आने के बाद ये वेयर हाउस में आया था एयर कैनेडा के, एयर कैनेडा का वेयर, थोड़ी देर के बाद एक फोकलिफ्ट आ गई थी, एक ट्रक ड्राइवर आ गया था, फोकलिफ्ट ने इसको ट्रक के ऊपर चढ़ाया था, और लो जी को सामान सारा का सारा चोरी हो गया था। 3 बजे से पहले एयर कैनेडा का जो एम्प्लॉई है उसने कहा हाय हाल 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 हाय हाय चोरी होगी चोरी होगी चोरी होगी, इतना बड़ी की पड़ी पूरी की पूरी स्किडी गायब हो गई है, पूरे की पूरे कैनेडा वाइड जो है वारंट इशू किए गए थे। अब वो ये कहते हैं कि एक शख्स इसका अभी भी एट लार्ज है, इज इन अमेरिका मगर जेल भुगत रहा है। कैनेडा वाइड वारंट अभी भी इशू है, 4 सस्पेक्ट्स इसके नहीं है, जिसमें सिमरनप्रीत पनेसर वो नहीं अभी मिले, 31 साल का एक और है एयर कैनेडा का एम्प्लॉई, जब ये चोरी हुई थी उस वक्त पील पुलिस कहती है कि ही वांटेड फॉर द थेफ्ट ओवर 5,000। उसके अलावा एक अरसलान चौधरी, हमारे अरसलान भाजन भी हैं ऑफ कोर्स जी, चौधरी साहब 42 साल इनकी उम्र है, कोई पक्का एड्रेस नहीं है, और एक मिस्टर मैकलीन 25 ईयर्स, ये भी ब्रैम्पटन का ताल्लुक है, इसी ऑफेंस के लिए ये भी रिक्वायर्ड है। 4 बंदे ये वाले हैं जिनको ढूंढ रहे हैं, मगर ये जो भाईजान है ये जस्ट केम, ग्रोवर साहब ही जस्ट केम
फ्रॉम इंडिया,
ही लैंडेड फ्रॉम इंडिया 6 तारीख को। अर्चित ग्रोवर इनका नाम है, 6 तारीख को आए हैं, मगर पुलिस ने आज इनके बारे में, आपको याद होगा हमने आपके साथ शेयर किया था कि पुलिस की एक सुपरिटेंडेंट है ब्लैक कम्युनिटी से, शी इज द फर्स्ट वुमन सुपरिटेंडेंट, मगर उन्होंने इतराफ किया था कि यस, क्योंकि पुलिस में रेसिज्म बहुत ज्यादा है और बहुत सारे पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स जो हैं जो ब्लैक कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, दे आर वेरी टैलेंटेड बट अनफॉर्चुनेटली रेसिज्म के बायस दे विल नेवर लेट देम प्रमोट और आगे बढ़ने के उनके कोई मौके नहीं। तो इसने पहले दिन बड़े खुले तौर पर ओपनली इस गलती का इजहार किया था कि यस प्रॉब्लम है और रेसिज्म की बिना पे नहीं लोगों को बढ़ने दिया जाता, तो मैंने उनको चीटिंग कराई। आज उन्होंने ये कहा है कि यस मेरी गलती थी। ठीक, جسٹن بیبر کے بارے میں آپ کو پتا ہی ہے الحمدللہ یہ ٹھیک ہو گیا. مجھے یاد ہے یہ ایک دفعہ آپ کو یاد ہے بیمار ہوا تھا, میں نے بھی دعا ہی واز ویری سیریسلی ایل, مگر الحمدللہ جسٹن بیبر. اب دیکھیں دنیا کتنی تیزی سے گزرتی ہے, چھوٹا سا بچہ تھا جس کی ماں نے اس کے گانے کو فیس بک کے اوپر
اسٹریٹفورڈ کیا تھا, وہ بھی کوئی بڑے شہر کا نہیں ہے, اسٹریٹفورڈ کا رہنے والا ہی ہے,
یا ماں نے اس کا فیس بک پہ پوسٹ کیا تھا, وہاں سے اس کی قسمت بنی. پھر جب پیسہ بہت زیادہ آیا, بچہ تھا. اب مجھے لگتا ہے کہ جسٹن بیبر نے بھی اپنی بڑی عمر کی بچی سے شادی کی ہے, بڑی خوبصورت لڑکی ہے. ہز وائف جو ہیلی بیبر ہے وہ اپنا فرسٹ چائلڈ دے آر ایکسپیکٹنگ ٹو گیدر, اور ہیلی بیبر جو ہے نا وہ جسٹن بیبر اور ہیلی بیبر سے کہ وہ اپنے پہلے بچے کے لیے منتظر ہیں. اسٹریٹفورڈ اونٹیریو پاپ سپر اسٹار, انہوں نے بتایا کہ ان کی وائف جو ایکسپیکٹ کر رہی ہے بیبی کو, اور یہ تصویر انہوں نے شیئر کی ہے. اس امیج جو انہوں نے شیئر کیا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پتا رہا ہے کپل ایک دوسرے کو ٹیک کیئر کر رہا ہے. ہیلی بیبر نے کنفرم کیا دا کینیڈین پریس آن تھرسڈے دیٹ 27 ایئر اولڈ ماڈل از اے لٹل اوور 6 منتھس پریگننٹ, 6 مہینے سے وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں. تو الحمد للہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے. آپ کو بتائیے کہ جسٹن بیبر نے اور ہیلی بیبر نے 2018 میں ان کی ملاقات ہوئی تھی ایز ٹین ایجرز, پھر انہوں نے انگیجمنٹ کی ہے, اور جسٹن بیبر کی ایج 30 ایئرز کی ہے, شی از 27 ایئرز آف ایج, اینڈ بوتھ آر میرڈ ایکسپیکٹنگ دیئر فرسٹ چائلڈ.
اکارڈنگ ٹو دس اے ویری سیریس میٹر. اکارڈنگ ٹو اربنیشن کی ایک رپورٹ میں آیا ہے کہ پری کنسٹرکشن کانڈو سیلز جو ہیں ان ٹورانٹو پلمٹ لیولز دیٹ نیور ہیو بین سین سنس دا گلوبل فائنینشل جو کرائسز آیا تھا 2008-2009 میں, 15 سال پہلے. ڈیولپرز اب جو ہے دے آر ٹرننگ ان ٹو مور لوکریٹو انسینٹیو دینا چاہ رہے ہیں تاکہ لوگ ان کی طرف اٹریکٹ کریں. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پہلے کوارٹر میں دا فرسٹ کوارٹر آف 2024 1461 پری کنسٹرکشن کانڈو سیلز ہوئی ہے ٹورانٹو میں. ٹورانٹو کا مطلب GTHA میں. سو فار دس ایئر یہ لوئسٹ نمبر ہے سنس 2009, جب 2009 میں آپ کو یاد ہوگا کہ 884 سیلز ہوئی تھی, 884 وہ بھی ریکارڈ تھا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ 71% ڈاؤن گئی ہے مارکیٹ فرسٹ کوارٹر میں. 10 ایئر اور اس کو ایوریج لگایا جائے گا تو 10 سال میں بھی کبھی ایسا نہیں ہوا تھا. سیلز ان دا فرسٹ کوارٹر آف 2024 از 85% ڈراپ ہوئی ہے 2022 کے مقابلے میں. جب سیلز ہوئی تھی 2022 میں 9723 کمپیئر ٹو 1461. یہ جو ہے اس کے اندر آپ آگے رپورٹ میں کہا جاتا ہے کہ آلریڈی پرچیز جو لوگوں نے آلریڈی گھر کو ڈپازٹ دے کے پرچیز کر لیا ہے ان کے ساتھ مشکلات کافی آ گئی ہیں, اور وہ جو ہے بیکاز آف دا ہائی انٹرسٹ ریٹ اینڈ ویلیو آف دا ہاؤس دیٹ دے پرچیز, تو بینک نے بھی منع کر دیا ان کو لون دینے سے, اینڈ دے آر اسٹک اینڈ دے آر لوزنگ دیئر منی. اینڈ دیٹ افیکٹس کیا ہو گیا ہے کہ یہ جو بلڈرز ہیں 22 سے لے کے اب تک, مڈل آف 22 سے لے کے اب تک 24 میں 60 پروجیکٹس جو ہے انہوں نے اناؤنس کیے تھے, اور وہ جو 60 پروجیکٹس بنانے تھے ان کو روک دیا گیا, پروجیکٹس کو روک دیا گیا ہے انڈیفینیٹلی, جس کا مطلب یہ ہوا کہ 60 پروجیکٹ کے 21,505 یونٹس جو ہے وہ جی ٹی ایچ اے میں کمپلیٹ نہیں کر سکیں گے. اور ڈیفنیٹلی جسٹ انفارمیشن اباؤٹ بلڈنگ جو نئے کنسٹرکشن ہوتی ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب تک دے کین ناٹ پٹ دا شول ان دا گراؤنڈ, جب تک ڈیولپر جو ہے 70% کا بیچ نہ دے, اگر 70% بکتے ہیں تو اس کے بعد پھر اس کو جو ہے بینک لون دیتی ہے, اور 2 ایئرز مارٹگیج کا اور میکسیمم آف $90,000. یہاں تک کہ ایک ڈیولپر ہے کارموسٹ فیلکارپ, उन्होंने क्या ऑफर दी है, दिस इज द यूनिक ऑफर, 2 ईयर्स का मॉर्गेज वो पे करेंगे अप टू $90,000 अगर आपका कॉन्डो जो आपने खरीदा है वो क्लोज टू $1 million हो. लग्जरी वेकेशन भी दे रहे हैं, फ्री पार्किंग दे रहे हैं एंड सो मेनी अदर यहां पर. मगर प्रोफेसर ऑफ टोरंटो यूनिवर्सिटी उन्होंने कहा है कि ये आज के दिन ये चीजें काम नहीं आ रही है डेवलपर्स की, क्योंकि जो बायर्स हैं हमारे दे आर वेरी वेल एजुकेटेड. उनको पता है कि आप ये चीजें देके हमें बुला रहे हैं और खरीदवा रहे हैं घर, मगर जो घर की कीमतें हैं उसको कोई नीचे नहीं कर रहा. मींस के पर स्क्वायर फुट जो है वो वैसा का वैसे ही, उससे ज्यादा मांग रहे हैं ताकि वो जो बीच में जो इंसेंटिव दिए हैं उसका भी बीच में से पैसा निकाल दिया जाए.
बहुत शुक्रिया माजिद भाई. देखिए हालात इतने खराब होते चले जा रहे हैं, आप इमेजिन करें कि एक पुलिस ऑफिसर, और बाज़ औक़ात हमारे हालात होते हैं और सिकनेस एज वेल, ये एक पुलिस ऑफिसर है. 2018 से लेकर 2012 के दरमियान आज टोरंटो का एक पुलिस ऑफिसर रुकॉप जो है वो क्रेडिट कार्ड्स और लग्जरी वॉचेस उसने चोरी की. एक तो क्या हुआ कि इसको एक आदमी ने सुसाइड कर लिया था और इसको और इसके दोस्त को बुलाया गया, ये वहां पे गया और आई डोंट नो अभी पता कैसे चला. वहां पर एक बड़ी महंगी घड़ी थी, 6,500 मालियत की घड़ी थी और वो घड़ी चोरी हो गई. अब ये कहता है पुलिस ऑफिसर कहता है कि घड़ी मैंने चोरी नहीं की, वह डब्बा खाली पड़ा हुआ था. मगर मैं आई वॉज हैरान, 2020 में ये वाकया होता है और कहते हैं कि इसने गूगल किया था. अब गूगल के इसके फोन के रिकॉर्ड में वो गूगल भी आ गया कि इसने 2020 में गूगल किया था उस घड़ी के ब्रांड का. कहता बिकॉज आई लाइक वॉचेज, तो मैं क्यूरियस था इसलिए मैंने किया. फिर एक क्रेडिट कार्ड था जो चोरी हुआ था और वो क्रेडिट कार्ड इसने अपने एक दोस्त को दिया था. अगले दिन उसने एक बुचर शॉप के ऊपर वो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया था. अब पुलिस ने बहरहाल इसको सजा दी.
वर्स्ट पार्ट है ना, वर्स्ट पार्ट इन ह्यूमैनिटी कि ये पुलिस ऑफिसर है और ये जब वहां पहुंचे तो दे सॉ द डेड बॉडी और डेड बॉडी के हाथ में जो थी वो घड़ी बनी हुई थी और इसने वहां से निकाली और उसके साथ साथ जो ये उसके पास जो उसकी बिलोंगिंग्स थी, जैसे आपने कहा कि वो क्रेडिट कार्ड वॉलेट पूरा का पूरा निकाला.
वो कहता है कि ये ऐसी जगह पे थी कि जहां पे विंडी था और इसकी जैकेट के उड़ने का चांस था, तो बस मैंने वो जैकेट हटाई.
नॉर्मली होता क्या है कि आप जो भी आपको चीजें मिले ना घर से, तो उसको आप एक थैली में बंद करके उस पर टेप लगा के वो नाम लिख के उसका पुलिस स्टेशन में ले आके दे देते हैं.
अच्छा, ये फिर इसने सिर्फ यही नहीं किया, मजे की बात है, ये जो गाड़ी भी चला रहा था वो भी किसी मरे हुए बंदे की गाड़ी चला रहा था. वाजिब फंस गया. आज एक और शख्स, आप शक्ल देखें इस आदमी की, बड़ा ही दुख हुआ है. आपको याद होगा सीबीसी का एक जर्नलिस्ट जो था उसका मर्डर हो गया था. ठीक है, तो ये टोरंटो का आदमी है, इसने प्लीड किया है गिल्टी मैन स्लॉटर ऑफ डेथ ऑफ द फॉर्मर सीबीसी प्रोड्यूसर. ये सारी की सारी न्यूज है. आइए, मैं इस वक्त मुझे इशारा हुआ है पीछे के तरफ जाके आपकी मुलाकात करवाना चाहती हूँ. पाकिस्तान 9 मई का वाक्य है, पूरी दुनिया का यही हाल है, पूरी दुनिया इज लाइक द सेम. इंडिया के इलेक्शन के बाद देखिए कितना क्या सूरत हाल होती है. पाकिस्तान का तो वैसे ही बेड़ा गर्क हुआ है. लेट मी टेक गो टू द बैक स्टूडियो एंड आई विल मेक यू मीट विद नईम खालिद लोधी साहब और उसके फौरन बाद हम आपको लेकर के चलेंगे स्टूडियो को. मुझे रिप्लेस करेंगे जनाब लियाकत मलिक साहब, मुझे रिप्लेस करेंगे उसी स्टूडियो में जनाब लियाकत मलिक साहब होंगे, क्योंकि हम अब टेलीविजन के स्टूडियो में एंटर होने लगे हैं. और लियाकत मलिक आपके लिए पेश करेंगे भूली बिस्तरी यादें. तो आई लव यू ऑल, मगर बातों का सिलसिला जारी रहता है. स्टे ट्यून्ड. लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं, वो मेरे साथ हैं. मई 9 के हवाले से और पाकिस्तान की सूरत हाल के हवाले से हम बात करते हैं. स्टे ट्यून्ड प्लीज. तमाम को खुश आमदीद कहना चाहते हैं हमारे फा मुजफ्फर. आज 9 मई का दिन, और ये 9 मई का दिन जिसमें पाकिस्तान में आपको याद है जो भी हुआ था, इमरान खान साहब का अरेस्ट हुआ और उसके बाद जो भी लाहौर में हुआ वो आप तमाम ने पूरा साल उसके बारे में सुना. बेशतर इसके कि मैं इस प्रोग्राम को शुरू करूं, मैं पाकिस्तान के आम आवाम को एक बात जरूर कहना चाहती हूं. फॉरगेट अबाउट आरफा, फॉरगेट अबाउट एनी वीलॉग्स, फॉरगेट अबाउट एनी बडी. बिलीव यू मी, एवरीबडी हु हैज यूट्यूब चैनल और अब तो मुझे पता चला है कि ऑन टॉप ऑफ यूट्यूब सम पीपल आर जस्ट आस्किंग कि सपोर्ट टू सपोर्ट आवर ऑब्जेक्टिव फंड अस। एवरीबडी इज मेकिंग मनी। इस पूरे प्रोसेस में अगर कोई चीज कोई लूजर है तो वो मेरा पाकिस्तान है, दैट्स इट। इसमें अगर हम मुर्द इल्जाम ठहराते हैं सियासी पार्टियों को, इसमें हम मुर्द इल्जाम ठहराते हैं अपनी एस्टेब्लिशमेंट को, तो ना तो सारे लोग पांचों उंगलियां बराबर हैं, ना हर तरह के लोग बराबर हैं। देर आर ऑनेस्ट पीपल एज वेल। मगर पैसा बनाने वाला अपनी जायदाद भी बना लेगा, पैसा भी बना लेगा, बट एट द एंड ऑफ द डे जो बदनामी और रुसवाई है वो पाकिस्तान की, और दैट्स ऑल व्हाट इट इज। ये मैं आपके जिम्मे छोड़ती हूं कि प्लीज थोड़ा सा हमें इतना भी इमोशनली होना चाहिए कि एकदम से किसी के लिए पूरे का पूरा सब कुछ उतारने के लिए तैयार हो जाए और एकदम से किसी के इतने दुश्मन हो जाए। थोड़ा सा लॉजिक को इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। हमारे आज के प्रोग्राम में 9 मई के हवाले से जनाब लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब मेरे साथ हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एक्सेप्ट किया हमारा आज का इनविटेशन। सर, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह।
ऑलवेज नाइस टू सी यू, ऑलवेज नाइस टू मीट यू। आज ऑफ कोर्स 9 मई का वाक्य और बेशुमार लोग इस वक्त भी जेलों में हैं। मैंने बहुत से लोगों के इंटरव्यूज देखे और उन इंटरव्यूज में उन्होंने वो जो सोपते बर्दाश्त की जेलों के बीच में उनका भी जिक्र सुना और प्रैक्टिकली दिल खून के आंसू रोया भी। क्या वजह है कि एक साल से, और मुझे याद है मैंने मार्शल लॉ के एक दो दौर भी देखे हुए हैं जिसमें इनकी अदालतें हुआ करती थी जो इंस्टेंट फैसला किया करती होती थी और आर्मी चीजों को लिंगर ऑन करने की कायल नहीं है, क्या वजह है कि इतने लोग जो जेलों में बंद हैं, पूरा एक साल होने को है, ना कोई मुकदमा चला, ना कोई इन्वेस्टिगेशन हुई, यानी जुबानी कलामी बड़ा कुछ सुनने को मिलता है, जी इन्होंने तोड़फोड़ कर दी, इन्होंने तोड़फोड़ कर दी। तो कुछ फरमाएंगे इसके बारे में कि क्यों फेलियर रहा इन्वेस्टिगेशन?
जी जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो मेरे ख्याल पूरे कौम इस बात में मुत्तफिक है कि जो कुछ 9 मई को हुआ बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसके हम डिटेल में नहीं जाते कि मुहरकात क्या थे, वाकयात क्या थे, किसका कसूर था, क्योंकि वो फिर लंबी बहस हो जाएगी। लेकिन ये जो आप बात कह रही हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स बड़ी जल्दी फैसले करती हैं, हो सकता है उन्होंने फैसले कर भी लिए हों, लेकिन असल मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट में ये रिट मौजूद है कि मिलिट्री कोर्ट में मुकदमे चल नहीं सकते और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई फैसला नहीं दिया है, और उसका नतीजे ये निकल रहा है कि जो लोग जेलों में हैं, चाहे सही जो तो जिनको तो रिहा होना था वो कर दिए थे, ईद से पहले रिहा हो गए थे, जिनकी सजाएं हैं उनकी सजाएं प्रोमलगेट नहीं हो रही उनका, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक रखा है, तो इसका मेरा ख्याल आप इंडिया दिया था DGISPR ने अपने उसमें। तो ये अगर आप मुझे इजाजत दें तो इस बहस में मैं नहीं पढ़ता कि ये किसका कसूर है किसका नहीं है, लेकिन जो बात आपने कही है मैं उसी को आगे बढ़ाऊं, अगर कि ये हम सब जानते हैं कि इदारों के बगैर और खासकर अफवाज के बगैर कोई मुल्क सर्वाइव नहीं कर सकता, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद अवाम की अगर कुछ उनकी एस्पिरेशन हो या उनका कुछ मुतालबा हो तो उसको नजरअंदाज करके उसको इग्नोर करके फिर भी मुल्क आगे नहीं चल सकता, तो देयर इज अ स्टैंड ऑफ। और फिर हमें दो तीन असूल पता है मामलात के, एक तो ये कि जब दो एंटिटीज हो और उनका अपना अपना बयानिया हो तो उसका हल फिर उनमें से एक फरीक नहीं निकाल सकता, उसका हल फिर तीसरा फरीक निकालता है। इसकी डिटेल में मुझे जाने की जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हायर जुडिशरी के ऊपर कि वो मुल्क को इस तनाव से बचाएं और फैसला करें कि वो क्या करना चाहते हैं। अगर जुडिशियल कमीशन बनना है तो बनवाएं या बताएं, नहीं बनना तो उसका भी उनको कोर्ट्स के जो मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में जो फैसला है वो करें। एक तो ये बात है कि जब दो फ्रीक अलग अलग उनका बयान हो, अब मैं ये नहीं कह रहा कौन सही है कौन गलत है क्योंकि वो फिर बहस दूसरी हो जाएगी, एक साल से वो बहस चल रही है। दूसरी बात कि जो ताकतवर होता है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पहला स्टेप बैक करे और अपने बड़ेपन का इजहार करे, और बड़ा भी वो होता है जो पहले ये काम सर अंजाम देता है। तो ये तो प्रिंसिपल हैं जो सारी दुनिया जानती है। जो मेरे जैसे लोग काम कर रहे हैं, जिसमें अभी आपने जिसका जिक्र किया, मेरा और हमारा खदशा ये है कि इस किस्म का स्टैंड ऑफ, इस किस्म का तनाव अभी सस्टेनेबल नहीं है, और इसके दरमियान दीवार बन के खड़े होना हमारी जिम्मेदारी है। आईटी की लैंग्वेज में जिसको कहते हैं फायर वॉल बनाना जरूरी है कि इस क्लैश को हर हालत में रोका जाए। और मेरी इस्तदा है इमरान खान साहब से भी, और मेरी इस्तदा है इंस्टीट्यूशन से भी कि मेहरबानी करके मुल्क की खातिर, मुल्क के आवाम की खातिर एक एक कदम पीछे हट जाए और कुछ बातें वो उनकी मान ली जाए कुछ, और उसको ये ना समझा जाए कि ये कोई कॉम्प्रोमाइज है, इसको ये समझा जाए कि हमने कौमी हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करते हुए हमने सांस लेने का मौका दिया है मुल्क को और कौम को। ये मेरा ख्याल है, इस तरीके से होना चाहिए। और मैंने इसके ऊपर एक बड़ा तफसील से मजमून लिखा है जिसमें 9 पॉइंट्स दिए हैं, तो अभी वो 9 के 9 पॉइंट्स तो इधर शायद टाइम नहीं होगा, लेकिन किसी और प्रोग्राम में हो सकता है, मैं आपको उसकी कॉपी भेज दूंगा, तो आप देख लीजिए कि वो बैन मसले का हल एक प्रपोज जरूर करती है। और यहां पर मैं आपके पहले सवाल पे रुकता हूं, फिर आगे इंशाल्लाह बात करेंगे। जी
बहुत शुक्रिया सर, आपने एक्सप्लेन किया। सर साहब, आप हमारे पिछले प्रोग्राम्स देखें जिसमें मैंने तमाम प्रोग्राम्स में ये कहा, मुझे एहसास है कि बाज़ औक़ात जब हमारी तफरीक हो जाती है या हमारे दिल में किसी के लिए नफरत आ जाती है तो हम खामखा शक व शुबहात में मुब्तला हो जाते हैं। मगर अगर आप पाकिस्तान की तारीख में चले जाएं तो जनाब ये प्रोग्राम देखने वाला है, इसके 4 एपिसोड्स हैं जो हमारा रिकॉर्ड हुआ था लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जनाब इनाम रहीम साहब के साथ, कि इट स्टार्टेड फ्रॉम गुलाम मोहम्मद साहब के साथ, जनाब एक जिसने कुर्बानी दी थी मियां अब्दुल रशीद उस वक्त चीफ जस्टिस थे, और जो बुराई को बोया गया था वो जस्टिस मुनीर जो थे वो, और जनाब गुलाम मोहम्मद के तहत तो पॉलिटिशियंस थे जो अल्टीमेटली उन्होंने इन्वॉल्व किया, आहिस्ता आहिस्ता इदारे इन्वॉल्व होते 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 आज जिस स्टेज पे आपको नजर आ रहे हैं और मुझे नजर आ रहे हैं वहां खड़े हैं। मगर हमेशा कौन इन्वॉल्व करता है? पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व करते हैं। अगेन मेरी पार्टी पाकिस्तान है, दैट्स इट, और खुदा गवाह है कि मेरी पार्टी सिर्फ पाकिस्तान है। मुझे डे ऑफ जजमेंट पे बड़ी अच्छी तरह से यकीन भी है। मगर मैं अभी जब आपने बात की तो आज जनरल साहब आपने जब ये बात पूरी की पूरी की तो आर्मी की इन्वॉल्वमेंट का जब हम जिक्र करते हैं तो मैं भी बल्कि आपसे जब बात कर रही थी तो मैं इसी के नोट्स ले रही थी कि 4-5 बातें, आप सारी बातों की डिटेल की तरफ ना भी जाएं, 4-5 बातें। एक है जनाब बाजवा साहब जब थे उन्होंने कहा हम आर्मी ए पॉलिटिकल हो गई, जिसने शक में मुब्तला किया इससे पहले आप पॉलिटिकल थे जो आज आप ए पॉलिटिकल हुए, मगर बाद में भी कोई सूरत हाल हमें मुनासिब नजर आई। उसके बाद चंद एक मजामीन आए, आपको पता ही है एक आर्मी ऑफिसर का बेटा जनरल बाजवा साहब से मुलाकात करता है, गोल्फ कोर्स में मुलाकात होती है, उस पर 2 एपिसोड्स आ जाते हैं जिसमें फिर सियासी इन्वॉल्वमेंट का जिक्र था। तीसरी बात पे आ जाए, चंद आपके इंतहाई मोतबर जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने जब ये आउट किया कि हम तो नंबर ऑफ जर्नलिस्ट मौजूद थे जब बाजवा साहब हमें बुलाया करते थे, मैं हैरान हूं कि बाजवा साहब या हमारी आर्मी क्यों मिलती थी इन जर्नलिस्ट को, देयर वाज अ रीजन दे वांटेड टू प्रमोट समथिंग, और उसमें उन्होंने बहुत बड़ी बात जो कही या तो उसको डिनाई किया जाता, जिन्होंने ये बात कही उनको मुर्दे इल्जाम ठहराया जाता। 9 मई के वाक्य पे बिल्डिंग जलने पे आप मुर्दे इल्जाम ठहरा सकते हैं, तो एक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का एक वर्डिक्ट निकलता है कि जी पाकिस्तान की कैपेसिटी नहीं कि वो जंग कर सके, तो उस पर क्या सजा होनी चाहिए। आखिरी बात कि अभी जो आर्मी के ऑफिसर्स जिस हिसाब से मैं उनकी तस्वीरें देखती हूं, हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब भी जब आए तो जो एक वो गोल्डन पिक्चर आई थी एक जर्नलिस्ट के साथ, दैट वाज आल्सो अ सिग्नल। ये वजूहात है कि वो एक चंद लोगों और फिर हमारे यहां जो बाकी चीजें चल रही हैं उसमें आर्मी के ऑफिसर्स के लिए, नॉट आर्मी के लिए, चंद जनरल्स के लिए इतनी नफरत बो दी गई। और अब जो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस परसों की आई है इस पे आप कुछ तबसरा करना चाहेंगे? यानी आप एक आम आदमी के दिमाग से सोचें तो वेयर वुड यू प्लेस योरसेल्फ?
ये बहुत शुक्रिया। वो आपने शुरू में जो एक बात की थी कि ये पॉलिटिशियंस जो हैं ये खुद घसीटते हैं बुलाते हैं, लेकिन इसमें मैं सिर्फ इतना ऐड कर दूं कि देखें आने वाले और घिसट कर आने वाले इतने भोले नहीं होने चाहिए कि कोई आपको घसीटे और आप घिसट कर आ जाएं, तो ये किसी एक साइड को ब्लेम करने वाली बात नहीं है। इसमें जो घिसट कर आते हैं मेरा ख्याल उन पर भी पूरा पूरा ब्लेम बनता है। बाकी जो आपने कहा कि किसी ने कहा कि जी अब हम ए पोलिटिकल हो गए, आपको अगर याद हो तो एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की थी, दो बड़े बड़े थ्री स्टार्स ने और दोनों ने कहा था बस आज से हमने ये फैसला कर लिया। तो ये सारी बातें अब सामने हैं। मैं ये कहा करता हूँ हमेशा कि देखें मुसलमान में कोई भी खराबी हो सकती है, ये मैंने कहीं पढ़ा है, लेकिन मुसलमान झूठा नहीं हो सकता, तो अल्लाह करे कि ये झूठे ना हो। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उससे पहले आपको पता होगा कि मैं कोशिश कर रहा था कि किसी किस्म का रिप्रोचमा हो जाए, कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मैंने उसमें एक मजमून लिखा जिसमें 9 पॉइंट्स मैंने दिए, जिनकी सीधा सीधा बातें ये है कि कुछ चीजें मान ली जाए कि ये जो पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन है, जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड मुकदमे बनाए हुए हैं ये वापस लें, और पीटीआई से मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है ना अंडर प्रोटेस्ट इस गवर्नमेंट को काम करने दें फॉर सम टाइम। आप ये ना कहें कि हमने मान लिया है इनको कि ये गवर्नमेंट है, सारी दुनिया को पता है कि कैसे वो आए हैं जो, लेकिन आप इनको काम करने दें ताकि आपके जिम्मे ना लग जाए कि जी SIFC इसलिए कामयाब नहीं हुई कि आपने इंतजार पैदा किए रखा, बाहर से इसलिए नहीं इन्वेस्टमेंट आई कि आपने इंतजार किए रखा, अंदर से इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं आई कि आपने इंतजार किए रखा। दूसरा मेरे अपने ख्याल में पीटीआई खुद मुंतशिर है, और अगर किसी तरीके से बानी पीटीआई बाहर निकल आए या उनकी बड़ी लीडरशिप बाहर आ जाए तो उनको भी कुछ टाइम चाहिए अपने आप को रीऑर्गेनाइज करने के लिए। तो मैं तो अपनी तरफ से विन विन सिचुएशन लेकर आया था, लेकिन दोनों को बात बुरी लगी और कुछ लोगों ने ये सोचा कि शायद मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि मैं ये रोल अदा करूं, तो वो क्लियर हो गया जब कल हुई है परसों वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, और मेरे ख्याल इमरान खान साहब ने भी बड़ा क्लियर कर दिया था कि कोई जनरल बर्नैल हमने किसी को नहीं किया हुआ। तो मैं ये काम अपने तई कर रहा था, कुछ और साथी थे जो इसी लाइन पे सोच रहे थे, उस लिहाज से ये काम हो रहा था। अब जो मेरा खदशा है मैं उसका आपको बता देता हूं। देखिए ये तो दो तीन पार्टीज है ना, गवर्नमेंट है और पीटीआई है और एस्टेब्लिशमेंट है, और एस्टेब्लिशमेंट जब मैं कहता हूं आप सिर्फ इसको फौज ना समझें, इसमें हायर जुडिशरी भी है, इसमें इलेक्शन कमीशन भी है, इसमें नैब भी है, पीपल ऑफ पाकिस्तान भी एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। तो ये चार स्टेक होल्डर तो सीधे हो गए। एक और स्टेक होल्डर का मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी जिक्र किया था, वो थी दुश्मन की इंटेलिजेंस एजेंसीज, जो ये चाहती है कि ये क्लैश हो, क्योंकि उनका उनकी नजरें मरकूज हैं हमारे असासों के ऊपर, न्यूक्लियर असासों के ऊपर। वो कह रहे हैं कि इन्होंने हमने इनको बहुत कमजोर कर दिया है मुआशी तौर पे, इनके अंदर हमने इंतशार पैदा कर दिया है, इन्होंने एक दूसरे के गले पकड़ लिए, बस ये अभी किसी खून खराबे में मुलव्वस हो जाएं ताकि उसके बाद हम जो कूड ग्रेज कहते हैं हम उनको के भी आखिरी जो स्टेप है वो हम ले लें और ये जो है ना हो जाए। अब मैं आपको एक दो मिसालें देता हूं ताकि आपके नाज़रीन समझ जाएं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। आपको पता है कि जब अवाम और फौज एक दूसरे के आमने सामने हुए मिस्र में, तो फौज ने ओवरकम कर लिया और बहुत ही एक पॉपुलर लीडर को साइड कर दिया, और आज तक इजिप्ट कोई बहुत कोई तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं बन सका जब से वो ये मामला हुआ है। आपने देखा कि तुर्की में जब फौज और अवाम का क्लैश हुआ तो वो फिर अवाम ने काबू पा लिया अफवाज के ऊपर, और उसकी वजह ये थी कि अरदोगान उस वक्त डिलीवर कर रहे थे, लोग मुतमिन थे कि वो इकॉनमी बेहतर हो रही है, सब कुछ ठीक हो रहा है, और वो पावर में थे। तो इमरान खान साहब को ये सोचना चाहिए कि ना तो इस वक्त पावर में है, ना ही कोई जो पिछले उनके चार साल गुजरे हैं बहुत कुछ डिलीवर किया है, लेकिन वो डिलीवरी अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। तो पता नहीं लोग उनके साथ कितने खड़े होते हैं, गो के अभी नजर तो ये आता है कि बहुत लोग उनके साथ हैं। ये दो मिसालें तो होगी बैन बैन के, इनमें से कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब मैं आपको बताऊं सीरिया में क्या हुआ जब फौज और अवाम आमने सामने हुए, नाइजीरिया में क्या हुआ जब फौज और वो आमने सामने हुए, लीबिया में क्या हुआ, इराक में क्या हुआ, और भी कुछ मुल्कों की मिसालें हैं, वहां पर वो मुल्क हार गए, ना फौज जीत सकी ना अवाम जीत सके। तो इसका ये मतलब है कि जो हमारी सिचुएशन है इसमें मेरे मुंह में खाक 60% इम्कान है कि मुल्क हार जाएगा, बहुत कम इम्कान है कि इन दोनों साइडों में से कोई एक साइड जीत जाएगी। तो ये मैं दोनों साइडों को बता रहा हूं कि मुल्क की खातिर, मुल्क के अवाम की खातिर जो हिस्ट्री हमें बता रही है उसको देखते हुए खुदारा बस करें, माफ कर दें, और वरना हम जैसे लोग दीवार बन जाएंगे, हम आपको ये काम नहीं करने देंगे, हम एक फायरवॉल बन जाएंगे जब भी इस किस्म का कोई काम हमें होता हुआ नजर आया, और बहुत से लोग होंगे जो ये दरमियान में ये रोल अदा करेंगे। तो इस दुआ के साथ और इस काविश के साथ कि इरिस्पेक्टिव के कसूर किसका है, हम सबसे इस्तेदा करते हैं कि एक कदम पीछे हटें, पाकिस्तान को सांस लेने का मौका दें और अवाम को सांस लेने का मौका दें, تاکہ پاکستان کی ساکھ بحال شروع ہونی ہو. باقی یہ ہے کہ یہ معاملے تو چلتے رہیں گے جو ہے, باقی ڈیٹیل میں میں نہیں جاتا کہ میرے اس مضمون میں کیا ہے, وہ آپ خود پڑھیں اور کسی اپنے پروگرام میں یا مجھے بلا.
دیکھا آپ کی ایک بات مجھے اس میں بہت خوبصورت لگی تھی کہ بیان بازی سے گریز کیا جائے, کیونکہ یہ بیان بازی جو ہے یہ رفٹس کریٹ کرتی ہے. ابھی سر جو آپ نے پوری بات کی نا, میں نے بڑی تسلی سے آپ کی بات سنی, اور عام آدمی جس کا پاس کچھ بھی نہیں کرنے کا, وہ ڈفرنٹ وی لاگز اراؤنڈ دا ورلڈ سنتا بھی ہے, دیکھ بھی رہا ہے, پڑھ بھی رہا ہے. آپ کی نوجوان نسل کو آپ چینج نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں نا کہ بچہ بڑا ہو جائے نا لڑکا, تو باپ جو ہے وہ بھی پیچھے رہ جاتا ہے. آپ نے سر پہلی مثال دی ایجپٹ کی, ٹھیک ہے, آپ نے کہا فوج جیتی عوام ہاری, مگر فوج کسی کی اما پہ جیتی, اور آپ کو پتا ہے وہاں پہ جو سی سی کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے کس طرح سے, کیوں اپوائنٹڈ ہے, کیسے اپوائنٹڈ ہے, کیسے کریش ہوتا ہے جہاز کا, سی سی پھر بھی پہنچ جاتے ہیں ایجپٹ میں اور ایجپٹ کو رول کر رہے ہیں, بٹ دیر از رولنگ پاور از سم بڈی ایلس. آپ نے بات کی ترکی کی, آئی انڈرسٹینڈ, اردوغان صاحب وہاں ہے کیونکہ عوام نے قابو پا لیا تھا. باقی آپ نے چار پانچ ڈفرنٹ کنٹریز کی بات کی. اب آ جاتی ہوں میں پاکستان کی طرف. ہماری وہ کہتے ہیں نا ویئر دیر از اے فائر دیر از اے اسموک, ویئر دیر از اے اسموک دیر از اے فائر. ہماری افواج پریس کانفرنسز میں بار بار آ کے کہتے ہیں عوام پاکستان کی فوج سے بڑی. کس نے کہا نہیں کرتے؟ آپ کو کیا ڈاؤٹ ہے جو آپ بار بار اس چیز کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں؟ بیکاز آئی تھنک دیر از اے گلٹ ان سائڈ جس کو یہ کلیئر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہماری فوج تو بہت اچھی ہے, مگر پیپل ڈونٹ لائک دوز جرنلز جنہوں نے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو رول کیا. وین وی لک ایٹ دی دہشت گردی ان پاکستان, میری فوج کے ذمہ پاکستان کی سیکورٹیز ہیں, انٹرنل سیکورٹیز اینڈ ایکسٹرنل سیکورٹیز, وہاں پہ ہم مات کھا رہے ہیں. لوگوں کی زندگیاں اب محفوظ نہیں ہیں. انڈیا آتا ہے تو اندر آ کے آپ کے بندے مار کے چلا جاتا ہے. آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ صرف اپنے پولیٹیشنز کو اور اپنے یعنی آپ نے سیدھی توپیں اپنے, یہ سر میں عوام کا پیغام آپ تک پہنچا رہی ہوں. بہرحال میں آئی ڈونٹ وانٹ کہ آپ اس کے بارے میں اگر کہنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کہہ دیجئے گا, مگر میں نے جہاں یہ بات کی ہے میں نے وہاں بھی یہ بھی بات عوام کے لیے کہی ہے کہ آپ لوگ جو پاکستان میں ہیں, جو جتنے پاکستانی ہیں, آپ دیکھیے دیر آر پیپل میکنگ منی ایوری ویئر. آپ برائی سننا چاہتے ہیں نا فوج کی, وہ برائی کر کے دے آر میکنگ ہیک اے لاٹ آف منی, بٹ کس کا ڈیمیج ہو رہا ہے؟ میرے پاکستان کا ڈیمیج ہو رہا ہے. اور اللہ کرے کہ ادارے سمجھ ضرور جائیں. سر ایک چیز جب آئی, پی ڈی ایم ون آتی ہے, پی ڈی ایم ٹو آئی ہے, بلکہ جناب مشاہد حسین صاحب جو ہیں آپ امیجن کیجئے گا, واز آلویز آرمی کی بات کرتے تھے, مگر اس دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ اب ملک پہلے ہے. آپ کو پتا ہی کہ مشاہد حسین صاحب کاف لیگ کے ساتھ تھے, یعنی ہی واز اے فرنٹ رنر فار دی اسٹیبلشمنٹ, مگر ناؤ اب وہ انہوں نے اوپنلی عام عوام کو بتا دیا ہے کہ یو نو واٹ, اٹس اے ہائیبرڈ سسٹم, اور اس سسٹم میں ڈوریاں کسی اور کے پاس ہیں, سامنے کی سطح کے اوپر کوئی اور بیٹھا ہوا ہے. بار بار آپ نے یہ پروگرام سنے ہیں. اب جو میرا کنسرن آ رہا ہے, پی ڈی ایم ون بنی, پی ڈی ایم ٹو بنی, اب جو گندم کا اسکینڈل آ گیا ہے اس میں آپ کا جو اس وقت کے پی ڈی ایم ٹو کے پرائم منسٹر ہیں جناب کاکڑ صاحب, اور کاکڑ صاحب نے کتنی بڑی بات کہہ دی. انہوں نے ایک بندے کو کہا 47 کہ تمہیں زیادہ ترانے کی بات نہیں ہے, میں فارم 47. یعنی آپ سوچئے ایک ایک بندے نے آپ کے خلاف آ کے گواہی دینی ہے, یہاں کیا فرمائیں گے آپ؟
جی بہت شکریہ. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال کوئی سے انکار نہیں کرے گا کہ پی ڈی ایم ون انٹرم سیٹ اپ, پی ڈی ایم ٹو جو اس وقت ہے, یہ تسلسل ہے اسی گروہ کا جو کہ پی ڈی ایم ون سے شروع ہو کے آج تک موجود ہے. تو لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کو آئے ہوئے چند دن ہوئے ہیں یا تھوڑی دیر ہوئی ہے, کم از کم ڈھائی سال کا عرصہ تو ہونے کو جا رہا ہے. کسی بھی پولیٹیکل گروپ کی گورننس کا اگر آپ نے لٹمس ٹیسٹ لگانا ہو, پتہ لگانا ہو کہ وہ کتنے کامیاب و کامران ہیں, تو اس کے دو تین طریقے ہیں پتہ لگانے کے. آپ پہلے پتہ لگائیں کہ اکانومی کا کیا حال ہے, پھر پتہ لگائیں کہ انٹرنل کوہیژن کیسی ہے, صاحب ذرا اس کے ساتھ وہ فورن پالیسی کا معاملہ بھی آیا تھا, انٹرنل اینڈ فورن پالیسی دوسری چیز ہے, اور تیسری چیز ہے سیکیورٹی کے حالات. اگر تو کوئی یہ ثابت کر دے کہ جب یہ آئے تھے ایس پی ڈی ایم ون اور گزر گیا انٹرم کا دور, और चल रहा है PDM2 का दौर, तो इन तीनों में से कौन सी चीज जो है इम्प्रूव की है? क्या इकोनॉमी इम्प्रूव की है या इंटरनल सॉलिडेरिटी बेहतर होगी है, यूनिफाइड होगी है कौम, या हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी होगी है, अब हम किसी के इशारों पर नहीं चलते, अब हमारे अपने पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात इम्प्रूव कर गए, ईरान के साथ इम्प्रूव कर गए, अगर इम्प्रूव करने की बात आ रही है तो इंडिया के साथ जरूर आ रही है, लेकिन बाकी तो कुछ उसमें नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर जो है उसकी हालत सबके सामने है कि कराची में क्या हो रहा है, अब तो वो वबा जो है इस्लामाबाद तक पहुंची हुई है, और जहां तक कच्चे के डाकू हैं उनका भी हमें अच्छी तरह पता है, जो हमले हो रहे हैं हमारे फौज के ऊपर उनका भी हमें पता है। तो मेरा ख्याल है ये है कि ये अब सस्टेनेबल नहीं है इस तरीके से इतनी कड़वाहट के साथ। और फिर ये है कि मैं उधर से भी PTI वाले कौन सा भी काम कर रहे हैं, मैं गंडापुर साहब का कहना कि हम चढ़ाई कर देंगे, हम ये कर देंगे, ये कौन सा है? जैसे वो लेटर लिखा इमरान खान साहब ने कि जी अगर कुछ हुआ मुझे तो वो जिम्मेदार होंगे, इतना खतरनाक लेटर है वो मेरी बहन के। आज अगर CIA या रॉ या मुसाद या कोई और इदारा खुदा ना खास्ता हमारे अंदर कोई ऐसा काम कर जाए तो वो डायरेक्ट सारी कौम ये समझेगी कि ये काम फौज ने किया खुदा ना खास्ता। और एक वो जो क्लैश जिसकी हम बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं उसका और भी होने के इम्कानात जो बढ़ जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ जिस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसे भी कोई ऐसा पानी नहीं डाला इस पूरे जो है ना आग के ऊपर। तो मैं तो समझता हूं कि मैं और मेरे काफी सारे साथी उस चिड़िया की मानद है कि जब हजरत इब्राहिम को आग में फेंका गया तो वो चोंच में एक पानी का बूंद लेकर, पानी की बूंद लेकर उन्होंने फेंकी, चाहे उसका असर होना था या नहीं होना था, क्योंकि असर तो अल्लाह ताला ने पैदा करना है। तो पहले लोगों को शक था कि भी ये फौज का भेजा हुआ बंदा है, फिर कुछ ने कहा ये PTI का भेजा हुआ बंदा है, अब क्लियर हो गया दोनों ने मुझे डिसोन कर दिया। लेकिन मुझे इस चीज की परवाह नहीं है। जब कोई कहते हैं ना जी आप इस तरफ है या उस तरफ है, तो मैं कहता हूं मैं पाकिस्तान की तरफ हूं और मैं पाकिस्तान को बचाने के लिए सारी तगोदो कर रहा हूं, और भी लोग हैं जो ये काम करना चाहते हैं, मैं इस्तदा करूंगा वो आगे आए और इनकरीब आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग आगे आएंगे। तो इस वक्त हम इस चीज के मुकम्मल नहीं हो सकते कि ये स्टैंड ऑफ और ये कड़वाहट जारी रहे, इसका कुछ ना कुछ करना होगा। अगर आप खुद नहीं करेंगे कुदरत कोई काम ऐसा कर देगी कि आप करना। मैं एक चीज हिस्ट्री की बताता जाऊं, बहुत सारे लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट पीछे हट जाए कुछ लोगों के कहने पर। तो मेरी बहनों मेरे भाइयों, अयूब खान पीछे हट गया था जब जुल्फिकार अली भुट्टो आया, जब जहाज का क्रैश हुआ जियाउल हक का तो फिर फौज पीछे हट गई थी, जब मुशर्रफ से चीजें काबू में ना हुई तो फिर फौज पीछे हट गई थी। तो बजाय इसके कि कोई टूट फूट हो, बजाय इसके कि कोई हजीमत हो, खुद ब खुद सबको मैं सदा कर रहा हूं एक एक दो दो कदम पीछे हट जाएं, इस मुल्क को आगे चलने दें। और मैं इसका नाम कह रहा हूं शॉर्ट टर्म एंड इमीडिएट रिकंसिलिएशन। लंबी रिकंसिलिएशन तो वही है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक मुल्क को चलाना होगा, उसकी डिटेल में हम फिर कभी जाएंगे। तो ये मेरी काविश है बहन और ये मैं करना चाह रहा हूं जी।
बहुत शुक्रिया सर, मुझे बिल्कुल आपकी काविश के ऊपर कोई शक नहीं है। अब आप देखिएगा कि जनरल लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल जो कि नेक्स्ट CEO एक्सपेक्टेड थे, उनको भी बाई फोर्स उनसे रेजिग्नेशन ले लिया। देर आर अदर्स एज वेल, मेरे पास उनकी भी लिस्ट आज पहुंच गई है जिसमें ब्रिगेडियर्स भी हैं। ये चीज मैं जनरल चिश्ती साहब, रिटायर्ड जनरल चिश्ती साहब का बयान सुन रही थी और मेरा ख्याल है वो जो मुहिब वतन आर्मी जनरल जिन्होंने पैसा नहीं बनाया और मुल्क के लिए काम किया उनके लिए भी तशवीश की बात है। मगर ये जो इस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट है दे आर नॉट रेडी टू लिसन, और आपकी अदलिया ने भी एस्टेब्लिशमेंट को, आम आदमी तो अदलिया की बात भी सुनता है ना, जनरल फैज का जिक्र बार बार आ रहा है कि उन्होंने जाके कहा कि भाई मेरी दो साल की मेहनत को जाया हो जाएगी, फिर छह आपके जो जजेस हैं वो लेटर लिख देते हैं कि हमें कोई फैसला ही नहीं करने दिया जाता, हमें इतना प्रेशर है, हमारी तस्वीरें बनाई जाती हैं। जनरल शौकत सदीकी का यही मामला था मगर उस आदमी ने ही डिड नॉट लेट इट गो, उसने प्रूव किया कि वो राइट था, जो वो कह रहा था वो सही था। तो ये वजह है कि, और आर्मी आके कहती है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी अवाम बड़ी मोहब्बत करती है, कैसे हो सकता है जजेस की बात सुनने के बाद, अदलिया की बातें सुनने के बाद, लोगों के वीलॉग सुनने के बाद, जनरल्स की रिटायरमेंट फोर्स सुनने के बाद दे कैन लव आर्मी। अल्लाह मेरे पाकिस्तान का हाल बेहतर करे, एंड आई बिलीव टू रॉन्ग्स डजंट मेक वन राइट। अल्लाह इस मुल्क का हामी व नासिर रहे any message what you want to convey, because I feel sad jab Imran Khan sahab ki main mukammal taur pe is baat pe ikhtilaf karti hu, Nawaz Sharif sahab hain ya Shehbaz Sharif sahab hain, wo bhi establishment ke kadmon mein ja ke baithe, chori chupe mulaqat bhi ki, Zardari sahab hain unhone bhi compromise kiya, Mohtarma jab wapas aati hain wo bhi compromise karke wapas, she was a wonderful woman. Imran Khan sahab bhi agar aap ye lafz kehte hain ki hum unse baat karenge jo hamare mukhalif hain, that is wrong, magar mukhalifin jo hain wo zabardast se zabardast hote ja rahe hain, wo is duniya ke aur is mulk ke na khuda bante chale ja rahe hain, magar awam badi vahshi hai. Mujhe kabhi kabhi Pakistan pe taras aata hai. Ek zamane mein sir hum vaderon ko kehte the, vadere apne ilake ke logon ko taleem nahi lene dete, unko jhoot karte hain, unki naslon tak ko wo apna apne girvi rakh lete hain, yani they are just like their slaves. And I think ab mujhe lagta hai ki jo hamare idaron ki jo press conferences aati hain aur 9 mai ko jo samne bana ke rakha hua hai, hawa bana ke rakha hua hai, ye darane ke liye ki agar tum bole to tumhare sath bhi yahi sulook karenge. If I'm wrong, do correct me.
جی پہلی بات تو یہ کہ وہ آپ نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا, بعد میں اس کو بالکل واضح کر دیا کہ پاکستانی عوام اپنی فوج سے پیار کرتے ہیں اور اپنی فوج کی عزت کرتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ جو بھی پالیسی اختیار کریں وہ اس کو من و ان مان لیں گے. تو اگر آپ کی پالیسی پر کوئی تنقید ہو تو خدا را اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ فوج پہ تنقید کر رہے ہیں یا شہیدوں کا عزت نہیں کر رہے, یہ اس چیز کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام, بلکہ یہ تو عمران خان نے بھی کہا ہے کہ جی فوج ہماری ہے اور ہم فوج کی پوری عزت کرتے ہیں, لیکن باقی لوگ آپ دیکھیں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر فوج نے اپنے ویٹرنز کو اپنے آپ سے کہا ہے کہ یہ ہماری مخالفت کرتے ہیں. تو کیسے مخالفت کر سکتے ہیں, ہمارے خون میں فوج دوڑ رہی ہے, ہم پلے بڑے آج بھی ہم فوج کے ساتھ منسلک ہیں اور منسلک رہنا چاہتے ہیں, لیکن وہ پاور میں ہیں, وہ بڑے ہیں, وہ ہمیں گلے لگائیں گے تو ہم گلے لا سکتے ہیں, ہم کیا نہ خدا نہ خاصا کو کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جب تک یہ سائیکل ختم نہیں ہوگا کہ فوج کے کاندھوں پہ بیٹھ کر بجائے اس کے کہ جو پولیٹیشنز ہیں وہ عوام کے ووٹ لے کر اور عوام کے زور پر پاور میں آئیں, وہ بائی ہک اور بائی کروک جو بھی طریقے استعمال کرتے ہیں, وہ اس میں سے بہت سارے طریقے غیر قانونی ہوتے ہیں, وہ اپنے آپ کو پاور میں لانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں, اپنے ایمان اور اپنے ہر چیز کی بازی لگا دیتے ہیں. یہ جب تک ختم نہیں ہوگا, اب عوام تو سمجھ گئے ہیں, اور لیکن یہ کہ اب یہ سائیکل فی الحال ایک میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ آگے چل نہیں پائے گا کیونکہ ابھی اویئرنیس بہت ہے. تو اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ اس وقت پرابلم ہے غریب آدمی کو جس کو روٹی 15 سے 18 روپے کی مل رہی ہے, پرابلم ہے پاکستان کو جہاں پر کوئی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے رپروچمنٹ کریں, انڈر پروٹیسٹ کریں, انڈر ڈیورس کریں, اور اس کے بعد مجھے تو نظر آ رہا ہے, میں آج آپ کے پروگرام میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں, موجودہ حکومت اپنی تمام تر وساکھیوں کے باوجود, تمام تر سپورٹ کے باوجود نہیں چل پائے گی 1.5-2 سال سے زیادہ, یہ بات آپ میری یاد رکھیے گا. اور اگر ایسے چلتی بھی رہی تو یہ ملک کوئی ترقی نہیں کر پائے گا, کوئی باہر سے انویسٹمنٹ نہیں آئے گی, کوئی اندر سے انویسٹمنٹ نہیں کرے گا اس تلخی کے ماحول میں. اس تلخی کے ماحول کو ختم کرنا بے حد ضروری ہے, یہ سب کے لیے ضروری ہے, پاکستان کے لیے, افواج پاکستان کے لیے, پاکستان کے عوام کے لیے. اور یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے تو میرا خیال ہے کہ کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہے, اناؤں کی جنگ کو چھوڑیں, اپنی اپنی ضد سے پیچھے ہٹیں, تب جا کے بات بنے گی. اور یہ میں بالکل نہیں, میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں کہوں کہ کون ضد کر رہا ہے, کس کی انا بڑی ہے, جس کی بھی بڑی ہے, جس کی بھی ضد ہے, ان کو معلوم ہے, عوام کو نظر آ رہی ہے. آپ مہربانی کر کے رحم فرمائیں پاکستان کے اوپر, کرم فرمائیں عوام کے اوپر, بس کر دیں, بس کر دیں.
بہت شکریہ سر, میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, اور میں ایک ہیڈنگ دکھانا چاہتی ہوں. اگین محبت کرتے ہیں مگر چند لوگ, اور اس میں جرنیلز ہیں جنہوں نے غدر کیا. یہ آر ٹی کی ایک نیوز ہے, آپ کو پتہ ہی ہے کہ کشمیر میں ہمیشہ جو سیپریٹسٹ تھے جموں کشمیر میں, وہ پاکستان کے لیے الیکشن میں نہیں ووٹ ڈلنے دیا کرتے ہوتے تھے. یہ انٹرنیشنل میڈیا نے کور کیا اور میں اس کی ہیڈ لائن آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. Silence of the separatist. Kashmir wakes from the political hibernation with the calls for boycotting election a thing of the past. तो इसका मतलब है कि बाजवा साहब ने जो आके उन सहाफियों को कहा था कि हम अब लड़ नहीं सकते, हमारी ताकत नहीं है, तो ये मैसेज यहां से क्लियर हो रहा है कि पहले जो बाइकॉट होता था इलेक्शंस का इंडिया में, वो रेजिस्ट करते थे, कश्मीरी बेचारे भी अपनी किस्मत के लिए. इट इज अ थिंग ऑफ द पास्ट नाउ, बिकॉज अगर अंदर खाते फैसला हो गया तो कीप द पीपल एट द सेम प्लेटफॉर्म, एट द सेम पेज. बहरहाल अल्लाह मेरे पाकिस्तान का हम
एक जुमला कहने दें, उसके बाद आप प्रोग्राम बंद कर दें. देखें, बात यह है कि मैं ये हमेशा कहा करता हूँ, आपके प्रोग्राम में भी कहा है, ना हम गरीब मुल्क हैं, ना हम ऐसी कौम है जो कि बहादुर ना हो और बुजदिल कौम हो. सिर्फ ये है कि ये बुजदिली और ये गुर्बत किसी ने हमारे जहनों में और हमारे दिलों में डाल दी है. इनशाला हम इससे निकल आएंगे. जो आप कह रही हैं कि हम इस काबिल नहीं हैं, ये आर्टिफिशियल बात है कि हम इस काबिल नहीं, हम इस काबिल हैं. सिर्फ एक अच्छे लीडर की जरूरत है जिसका दिमाग भी बहुत बड़ा हो, जिसका दिल भी बहुत तगड़ा हो. इंशाल्लाह आप देखेंगे.
आमीन.
बहुत शुक्रिया.
और ये बदले की सियासत ना हो. सर आपका बहुत शुक्रिया. रोजी साहब आप मेरे साथ सर शामिल हुए, मैं दिल से आपकी एहसानमंद हूँ. ये जो कॉन्वर्सेशन है, ये बाज़ुकात आइस को मेल्ट होने में भी मदद करती है. बहुत से लोग जो गलत प्रोपेगंडा सुनते हुए उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो एक दिल में गिरह बांध लेते हैं, उन गिरहों को खोलने का भी बायस बन सकता है. बहरहाल मैं एक कमजोर इंसान हूं, मेरी एक कोशिश है, आई ओनली लव पाकिस्तान. आपका बहुत शुक्रिया फॉर गिविंग अस टाइम. इजाजत दीजिएगा, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी. तब तक हमारा आपका अल्लाह हाफिज़.
यू आर वॉचिंग ई आवाज टीवी, वॉइस ऑफ कम्युनिटी.
अभी आप सुन रहे थे एक खुसूसी इंटरव्यू आरफा जी के साथ. हमारे साथ शामिल रहिएगा. एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद आप सुन सकेंगे आपका पसंदीदा प्रोग्राम भूली बिसरी यादें, जिसे पेश करेंगे लियाकत नवाज मलिक.
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो.
हेवनली डिजर्ट्स, अपस्केल डिजर्ट्स कैफे, जहां आप इंजॉय कर सकते हैं इनोवेटिव डिजर्ट्स जैसे कि क्रॉफल, मिल्क केक, चीज केक, क्रेप्स, Sandy jars, British classics, handcrafted drinks, mojitos, milkshakes and smoothies. Mazedar desserts ki bahut sari variety aur wo bhi puri family ke liye. Heavenly Desserts, 5840 Mavis Road, Unit No. 2 in Mississauga. Call 905-203-0086, 905-203-0086.
यूं ही चलना चल रही, यूं ही चलना चल रही, प्लानिंग फॉर वेकेशन.
हवाई टिकट की कीमतें तो आसमान को छू रही हैं.
अरे मेरे लिए कोई डील तो देखो.
और मशीन के बजाय रिप्रेजेंटेटिव से बात करें.
है ना एयरविंग ट्रेवल, होल सेल रेट, पाकिस्तान, इंडिया और मिडल ईस्ट, एवरीवेयर वेयर यू वांट टू ट्रेवल.
एक्सीलेंट एक्सीलेंट.
पर्सनलाइज्ड ट्रेवल सॉल्यूशंस, अफोर्डेबल, इजी एंड डिस्काउंटेड एयरफेयर्स.
Airwing Travel and Tours, 905-272-2300, 905-272-2300, airwings.ca.